पृष्ठ संख्या 147, 12। इस बात की ओर एक बार फिर ध्यान दिलाना होगा कि आधुनिक साहित्य के आरंभ में नाटक के उदय का विवेचन करते हुए रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत लिखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यहाँ विलक्षण बात क्यों है इसकी कोई व्याख्या आचार्य ने नहीं दी, पर समझा जा सकता है कि इतिहासकार का विस्मय इसलिए था कि कहाँ तो पिछले प्राय 500 वर्षों तक हिंदी क्षेत्र में नाटक और रंगमंच अनुपस्थित रहा और कहाँ 19वीं शती के मध्य से आधुनिक गद्य परंपरा की शुरुआत फिर नाटक से होती है। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का नहुष नाटक तो पद्यबद्ध ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक 1862 पहले आता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी प्रताप नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण चौधरी के नाटक खड़ी बोली गद्य में एक के बाद एक क्रम में चले आते हैं। पर क्या आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटक से होना सचमुच ऐसी विलक्षण बात है? यदि हम 18वीं 19वीं शती की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जिस काल को सामान्यतः पुनर्जागरण कहकर पुकारा जाता है, तो पाते हैं कि इस समय की जो कई बुनियादी विशेषताएं हैं उनमें एक यह है कि परंपरागत हिंदू एकांतिकता की भावना का निरसन करने के लिए इस युग के मनुष्यों ने सामाजिकता की भावना पर बल दिया। इसीलिए सामाजिक छुआछूत को हटाने तथा पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा दिए जाने की लगातार उन्होंने वकालत की। उन्होंने जो संगठन बनाए उनके नामकरण में यह प्रवृत्ति अच्छी तरह देखी जा सकती है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का तदीय समाज, यूँ सामाजिकता की भावना विकसित करना उनके कार्यक्रम का एक मुख्य अंग था। नाटक अपनी प्रकृति से संश्लिष्ट विधा है। भरत मुनि ने जो कहा है, न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न योग, न कोई योग है और न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता हो। 1 से 116। वह आज तक अपनी जगह है। नाटक के प्रस्तुतिकरण में अनेक व्यक्तियों का सामूहिक योगदान है। नाटक लेखक, निर्देशक, अभिनेता, सज्जा सहायक, मंच व्यवस्थापक, प्रकाश चालक और इनके पीछे कार्य करने वाले अनेक शिल्पी तथा कारीगर, नाट्य रचना में इन सबका गुणात्मक सहयोग है। दूसरी ओर नाटक का आस्वाद भी अपनी प्रकृति में सामूहिक है। अनेक व्यक्ति एक साथ बैठकर उसे देखते हैं और इस एक साथ बैठने में नाटक का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि मनोभाव अपनी प्रकृति से अनेक बार संक्रामक होते हैं। नाटक देखने वाले को इसीलिए हमारे यहाँ नाम दिया गया, पृष्ठ संख्या 148, सामाजिक। तो नाटक अपनी रचना और आस्वाद दोनों सिरों पर सामूहिक तथा सामाजिक है। ऐसी स्थिति में पुनर्जागरण की मूल सामाजिक चेतना को व्यक्त करने के लिए यदि भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने नाटक के माध्यम को चुना तो युगीन परिस्थिति और काव्य रूप के संबंध की उनकी सही समझ की हमें सराहना करनी होगी। भारतेंदु युग के प्राय सभी लेखकों ने मुख्यतः या गौण रूप में नाट्य रचना अवश्य की। इस युग के नाटककार और उनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं देवकी नंदन त्रिपाठी, प्रकाशित अप्रकाशित 10 नाटक, शिव नंदन सहाय, कृष्ण सुदामा नाटक, प्रताप नारायण मिश्र संगीत शाकुंतल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत सौभाग्य नाटक 1889, बालकृष्ण भट्ट दमयंती स्वयंवर 1892, नल दमयंती 1897, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नाटक 1868, श्रीनिवास दास रणधीर और प्रेम मोहिनी 1877, संयोगिता स्वयंवर 1885, राधा कृष्ण दास महारानी पद्मावती 1893, राजस्थान केसरी अथवा महाराणा प्रताप सिंह 1897, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रुक्मिणी परिणय नाटक 1894, राधा चरण गोस्वामी अमर सिंह राठौर 1895, किशोरी लाल गोस्वामी मयंक मंजरी महानाटक 1891। नाटक की संश्लिष्ट प्रकृति के अनुरूप ही इस युग के लेखकों ने नाट्य रचना की। नाटक के संबंध में आलोचना और समीक्षाएं लिखी तथा नाटकों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय में भाग लिया। किसी एक युग में इतने पूर्णकालिक नाटक कम लिखे गए हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक शीर्षक निबंध 1883 हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का आरंभिक लेखन माना जाता है। इसी तरह व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा की शुरुआत भी नाटक से संबंधित है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा 1886 की आनंद कादम्बिनी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने और हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने की। अभिनय के संदर्भ में यह स्मरणीय है कि स्वयं भारतेंदु तथा उनके अनेक मित्र रंगमंच पर भूमिकाओं में उतरते थे तथा अन्य रूपों में रंग कर्म को प्रोत्साहन देते थे। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। यह नाटक हर दृष्टि से भारतेंदु युगीन लेखकीय जीवन का प्रधान अंग था। भारतेंदु के बाद नाटक आंदोलन कुछ समय तो गतिशील रहता है, पर क्रमशः शिथिल पड़ता जाता है। इसके पीछे कई कारण देखे जा सकते हैं। साहित्य क्षेत्र में उपन्यास का नया माध्यम लेखकों तथा पाठकों दोनों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। दर्शकों में से बहुतेरे यंत्रावलंबित माध्यम सिनेमा की ओर आकर्षित हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतेंदु जैसा केंद्रीय व्यक्तित्व तो फिर कोई दूसरा नहीं हुआ, जिसके इर्द गिर्द एक मित्र मंडली बनती और नाटक के सामूहिक माध्यम में सक्रिय रुचि लेती। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि हिंदी क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए कई प्रकार के सामाजिक अवरोध थे, जैसे छुआछूत की भावना और पर्दा प्रथा। इस दृष्टि से पुनर्जागरण के अग्रणी प्रदेश बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। जिस क्षेत्र में सामाजिक समरसता अधिक होगी, सामान्यतः वहाँ का रंगमंच और फलतः नाटक विकसित होगा। भारतेंदु के समय में और उनके बाद हिंदी क्षेत्र में नाटक या तो व्यावसायिक पारसी मंडलियों द्वारा खेले जाते थे या कुछ प्रबुद्ध साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों द्वारा। यह व्यावसायिक तथा शौकिया दोनों प्रकार के मंच चलते रहे। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का पृष्ठ संख्या 149 है, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1795 में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। दूसरा बड़ा नगर बम्बई था, जहां पारसी रंगमंच पर हिंदी नाटक की शुरुआत हुई 1871 में विक्टोरिया नाटक मंडली द्वारा। अगले वर्ष से ही अलग अलग सेठों की कंपनियां उत्तर भारत के छोटे बड़े नगरों में घूम घूम कर तंबू लगाकर अपनी प्रस्तुतियां करती थीं। इनके कथानक दो प्रकार के थे, या तो पौराणिक धार्मिक या इश्किया, बहुत कुछ आज के सामान्य बम्बैया सिनेमा की तरह। इनके लिए नाटक लिखने वालों में प्रसिद्ध हुए नारायण प्रसाद बेताब, आगा हर्ष कश्मीरी तथा राधे श्याम कथावाचक। इनकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित तथा शैली अधिकांशतः पद्यबद्ध थी। फारसी मंडलियों का दौर प्रायः 1930 तक बना रहा, जब धीरे धीरे सिनेमा के प्रचलन के साथ साथ ये क्रमशः समाप्त हो गईं। पारसी कंपनियों के अभिनय से हिंदी के अधिकतर नाटककार क्षुब्ध थे। इनकी प्रवृत्ति व्यावसायिक और रुचि सस्ती थी। भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद दोनों ने नाटक विषयक अपने निबंधों में इनकी प्रस्तुतियों की भर्त्सना की है, यद्यपि इनकी कुछ प्रविधियों को उन्होंने जाने अनजाने में अपनाया भी, जैसे संगीत की अधिकता, पद्यबद्ध संवाद, कथा विधान में संयोग और आकस्मिकता तथा समूचे प्रदर्शन में अति नाटकीयता का आग्रह। भारतेंदु के बाद भी हिंदी क्षेत्र में व्यावसायिक और शौकिया दोनों प्रकार के रंगमंच का सह अस्तित्व बना रहा। 1886 के आसपास कानपुर में कई नाट्य मंडलियां बनी। इलाहाबाद में दो मंडलियां स्थापित हुईं, श्री रामलीला नाटक मंडली 1889 तथा हिंदी नाट्य समिति 1908। माधव शुक्ल और उनके मित्रों की प्रेरणा इनके पीछे सक्रिय थी। बाद में जब वे अपनी सेवाओं के सिलसिले में लखनऊ और जौनपुर रहे, तो वहां भी उन्होंने रंग मंडल बनाए। कुछ महत्वपूर्ण नाटक जैसे CS स्वयंवर और महाभारत पूर्वार्ध माधव शुक्ल तथा महाराणा प्रताप राधा कृष्णदास पहली बार इन्हीं शौकिया नाट्य मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। काशी में भी इन दिनों कई नाट्य मंडलियां स्थापित हुईं, जिनमें भारतेंदु नाटक मंडली 1906 और नागरी नाटक मंडली 1908 प्रमुख हैं। इनके पीछे भारतेंदु के परिवार के बाबू ब्रजचंद की प्रेरणा थी। इन मंडलियों ने भारतेंदु और उनके परवर्तियों के नाटक खेले। कलकत्ता में माधव शुक्ल के प्रयत्नों से एक और संस्था बनी, हिंदी नाट्य परिषद 1906। कलकत्ता की पारसी कंपनियों के बीच इस नाट्य परिषद की प्रस्तुतियां व्यावसायिकता के बीच उभरती हुई नई रंग चेतना का प्रमाण थीं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दोनों प्रकार का नाट्य लेखन चलता रहा। नारायण प्रसाद बेताब, कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक, संपूर्ण नाटक महाभारत, आगा हर्ष काश्मीरी, अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, बिल्व मंगल, यहूदी की लड़की, राधे श्याम कथावाचक, कृष्ण सुदामा, घंटापथ, तुलसी दत्त शैदा, जनक नंदिनी, नारी हृदय, भक्त सूरदास अर्थात बिल्व मंगल एक वर्ग के प्रतिनिधि थे। वे पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखते थे। दूसरी ओर भारतेंदु की साहित्यिक परंपरा थी, जिसमें माधव शुक्ल, महाभारत पूर्वार्ध, सीए स्वयंवर, बद्रीनाथ भट्ट, कुरु वन दहन नाटक 1912, चंद्रगुप्त 1915, आनंद प्रसाद कपूर, कलयुग नाटक 1912, संसार स्वप्न 1913, सुनहला वेश 1919, जमुना प्रसाद मेहरा, मोर ध्वज 1919, सती चिंता 1920, हिंदी नाटक 1922, दुर्गा प्रसाद गुप्त, नाटक मीराबाई 1920, अभिमन्यु वध नाटक 1922, गरीब किसान नाटक 1923, हरिदास माणिक, संयोगिता हरण अथवा पृथ्वीराज नाटक 1915, पांडव प्रताप अथवा सम्राट युधिष्ठिर नाटक 1917, श्रवण कुमार 1920 और पृष्ठ संख्या 150। माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों की नाट्य कृतियों की अधूरी सूची से भी स्पष्ट है कि दोनों ओर के नाटककारों ने दो प्रकार के कथानकों को विशेष रूप से चुना है, धार्मिक पौराणिक वृत्त तथा इश्किया दास्तान। वृत्त भी अधिकतर ऐसे लिए गए हैं जिनमें श्रृंगार, वीर और करुण इनमें से कोई एक रस या कि तीनों का मिला जुला रूप अभिव्यक्ति पा सके। सत्य हरिश्चंद्र, वीर अभिमन्यु या कि श्रवण कुमार के कथानक अपनी करुण चेष्टाओं के कारण अधिक लोकप्रिय थे। फिर यह भी कि करुण रस नाट्यशाला में संक्रामक अधिक होता था। इन रचनाओं के शीर्षकों में अधिकतर नाटक शब्द का उल्लेख जैसे इन वृत्तों की नाटकीयता या कहना चाहिए कि अति नाटकीयता को ही द्योतित करता है। पुनर्जागरण की चेतना को व्यक्त करने की उत्सुकता में इन नाटकों का संदेश सदैव ही मुखर हो गया है। अपने हर पक्ष में ये अति कथन के नाटक हैं। उस युग में वस्तुतः अति कथन और नाटक को पर्याय जैसा मान लिया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से जहाँ पारसी कंपनियों के नाटक पूरी तरह उर्दू की ओर झुके हुए हैं, वहाँ इन शौकिया कोटि के नाटकों की भाषा शैली साहित्यिक है। संवाद बीच बीच में पद्यबद्ध आ जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार के चरित्रों के लिए अलग तरह की भाषा का प्रयोग है। संगीत बहुलता की प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र मिलेगी। कुल मिलाकर ये नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ लोक मंच और पारसी रंगमंच के लोकप्रिय तत्वों को मिलाकर रचे गए हैं। हिंदी नाटक के इतिहास में जयशंकर प्रसाद की स्थिति एक विचित्र प्रकार के अंतर्विरोध से ग्रस्त है। नाट्य संभावना उनकी रचनाओं में सर्वाधिक है, जबकि उनके साहित्यिक परिदृश्य पर आते आते भारतेंदुकालीन रंगमंच एकदम शिथिल हो जाता है। संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ अपने नाटकों में वे लोक मंच, रामलीला, रासलीला, नौटंकी और पारसी थिएटर के तत्व रखते हैं, पर अपेक्षा हल्के रूप में। इसकी जगह वे पाश्चात्य नाट्य परंपरा के कुछ तत्वों को पूरे आत्मविश्वास के साथ नियोजित करते हैं। प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल की तरह ही वे पश्चिम से कहीं आक्रांत नहीं होते, वरन वहां के तत्वों का अपनी रचना में कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। आधुनिक नाटक के संघर्ष प्रधान विधान में भारतीय और पाश्चात्य तत्वों की टकराहट की वस्तु अधिक प्रभाव के साथ व्यक्त हो सकी है। हिंदी नाटक में प्रसाद के आने से गुणात्मक परिवर्तन होता है। सीधी सपाट भाषा की तुलना में लाक्षणिक और अधिक अर्थ संपन्न भाषा का प्रयोग होने लगता है, जिसे उन्होंने छायावादी कविता के तत्वावधान में विकसित किया। इसी के समानांतर देवता राक्षस ध्रुवों से हटकर अधिक मानवीय चरित्र बनते हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई के तत्व एक साथ हैं और इसलिए उनमें संघर्ष और अंतर्द्वंद बराबर चलता रहता है। फिर अब तक के मनोरंजन उपदेश या लालित्य भाव की तुलना में अपने नाटक शीर्षक निबंध में भारतेंदु ने नवीन नाटकों की रचना के 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं: श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। प्रसाद के नाटक बराबर एक बौद्धिक विचारधारा का आधार लेते हैं। इस प्रकार जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला रूप बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक पर रंगमंच से विच्छिन्न रहकर उसकी संभावनाएं पूरी तरह संपन्न नहीं होती। हिंदी क्षेत्र में रंगमंच जैसा संकेत किया गया कुछ तो सामाजिक रूढ़ियों के चलते विकसित नहीं हो पाया। फिर यहाँ अभिनेता को नाटक लेखक ने अपने से हीन माना और पृष्ठ संख्या 151 दोनों के बीच सहयोग के बजाय अंतराल बढ़ता गया। अपने रंगमंच शीर्षक निबंध में प्रसाद लिखते हैं, यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। नाटक पहले या कि रंगमंच, इस दुष्ट चक्र में पड़कर हिंदी क्षेत्र का रंगमंच लंबे अरसे तक शिथिल पड़ा रहा। पर हमें यह समझना होगा कि रंगमंच के प्रति अपने इस घोषित पूर्वाग्रह के बावजूद प्रसाद के नाटकों में अभिनेयता का तत्व कम नहीं है। यद्यपि हिंदी आलोचना की 3 पीढ़ियां एक प्रवाद के रूप में मानती रही हैं कि प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं है, नाटक संबंधी पहले व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य में बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा, किंतु उनके अर्थात प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। इसी स्वर में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद का साहित्य नामक संकलन में घोषित किया, ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। काशी की ही तीसरी पीढ़ी के आलोचक बच्चन सिंह का मत अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में इस प्रकार है। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। इन आलोचकों से सर्वथा विरोधी मत शांता गांधी का है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापक और सक्रिय रंगकर्मी है। नटरंग त्रैमासिक में वे लिखती हैं, प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए, और ये समस्याएं क्या हैं इन्हें भी समझा जाना चाहिए। प्रसाद के नाटकों के मंचन में जो कठिनाइयां सामने आती हैं उन्हें संक्षेप में यूं प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, नाटकों का कलेवर सामान्यतः बड़ा है। दूसरा, दृश्यों की संख्या अधिक है। तीसरा, और ये स्वभावतः जल्दी जल्दी बदलते हैं। चौथा, पात्र बहुत हैं। पांचवा, कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण मंच विधान है। और छठा, कहीं कहीं दार्शनिक क्लिष्ट भाषा है। तथ्य के रूप में ये आपत्तियां जायज हैं, पर ये सभी नाटकीय विधान के व्यवहारिक स्तर हैं और उसी स्तर पर इनका समाधान किया जा सकता है। कई समस्याएं तो नाटक के संपादन और संक्षेपण से सुलझ जाती हैं। शेक्सपियर के संपादन में उनके नाटकों की भाषा का उच्चारण की दृष्टि से आधुनिकीकरण कर लिया गया है। प्रसाद के मंच विधान का आधुनिकीकरण इस सादृश्य पर किया जाना चाहिए। अंधा युग के यशस्वी रचनाकार धर्मवीर भारती ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की मंचीय कठिनाइयों का विश्लेषण करते हुए व्यंग में कहा था कि उसकी हर एक प्रस्तुति में दो शेरों का खर्च है। एक शेर प्रथम अंक के चौथे दृश्य में मारा जाता है, दूसरा दसवें दृश्य में। इस तरह यदि एक पखवाड़े तक यह खेल चले तो 30 शेर खत्म हो जाएंगे और वन्य जीव के संरक्षक शेरों की घटती जनसंख्या को लेकर यूं ही चिंतित है। स्पष्ट है कि नाट्यालेख में भले शेर को मंच पर मारे जाते दिखाया गया है, पर वास्तविक प्रस्तुति में इस दृश्य को नेपथ्य में रखा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रथम अंक के छठे दृश्य में सिंधु में आती हुई नौका और उस पर बैठकर जाती मालविका की स्थिति है। इन सारे कठिन दृश्यों से संपादन की प्रक्रिया में आसानी से निपटा जा सकता है। मंच संबंधी यदि कुछ अन्य कठिनाइयों को चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ही देखा जाए तो सामान्यतः प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति माना जाता है तो दृश्यों के विस्तार को पृष्ठ संख्या 152 संक्षेपण में कम किया जा सकता है। चंद्रगुप्त में अंकों और दृश्यों का क्रम इस प्रकार है, 1:11, 2:10, 3:9, 4:14। यों कुल दृश्यों की संख्या 44 है, जिनमें तक्षशिला और सिंधु से लेकर मगध तक के दृश्य हैं। ऐसी ही स्थिति पात्रों की है, 21 पुरुष पात्र और 9 स्त्री पात्र, कुल संख्या 30, और नाटकीय समय प्रायः 25 वर्षों का है। यह हर प्रकार का विस्तार संक्षेपण और संपादन में कम किया जा सकता है। फिर यथार्थवादी मंच के बजाय नाटक को प्रतीकात्मक रंगमंच पर प्रस्तुत करने में व्यवहारिक कठिनाइयां एक ओर कम होंगी और दूसरी ओर अभिनय कला की संभावनाएं बढ़ेंगी। नाटक की भाषा कहीं कुछ दुरू हो सकती है, पर उसका प्रवाह उसे मंच पर समरस बनाए रहता है। गीतों की संख्या भी कम की जा सकती है। यूं तो जैसा उल्लेख किया गया, प्रसाद की रंगमंच के प्रति बहुत उन्मुखता न थी, पर यह तथ्य है कि नाटककार ने अपने जीवन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिनय में सक्रिय रुचि ली थी और उसका एक संपादित संस्करण प्रस्तुत किया था, जिसे बहुत बाद में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित कर दिया गया है। 1977 चंद्रगुप्त मौर्य का यह अभिनय दिसंबर 1933 में काशी में हुआ था, जिसके पूर्वाभ्यास में स्वयं प्रसाद बैठते थे। यहाँ स्मरणीय है कि यह नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 के नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा था। बाद में इसी का संशोधित परिवर्धित रूप 1931 में चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रकाशित हुआ। यूँ कल्याणी परिणय 1912 से चंद्रगुप्त मौर्य 1931 और फिर अभिनय चंद्रगुप्त 1933 के रूप में इस नाटक की कई रचनात्मक स्थितियाँ विकसित हुई हैं। प्रसाद की रंगमंच के प्रति उन्मुखता भी कुछ इसी तरह बढ़ी है। अपने अंतिम नाटक ध्रुव स्वामी ने 1933 को उन्होंने मंच की अनेक सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। यहाँ आकार कम है, 3 अंक हैं, जिनमें कुल 3 दृश्य बंद हैं। पात्रों की संख्या 8 है और ब्यौरेवार रंग निर्देश है। संगीत की बहुलता भी नहीं है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य तत्वों के सामंजस्य की बात पहले कही गई है। भारतीय नाटक का प्राण तत्व रस है, जबकि पाश्चात्य नाटक में संघर्ष की प्रधानता है। प्रसाद के नाटक में इन दोनों का संयोग होता है। वहाँ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल और शेक्सपियर के हेमलेट दोनों का आनंद एक साथ मिलता है। चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिक प्रणाली पाश्चात्य ढंग की है, तो संगीत का नियोजन भारतीय पद्धति के अनुकूल है। संगीत से प्रसाद दोहरा काम लेते हैं, एक ओर वह रस निष्पत्ति में सहायक है तो दूसरी ओर चरित्रों के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करता है। चरित्रों का विधान भी बहुत कुछ ऐसा ही है। स्कंद गुप्त नाटक का स्कंद वीर है, पर वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का उसमें अभाव है। प्रसाद के नाटकों में वध, आत्महत्या और हिंसा के दृश्य पश्चिमी ट्रेजिडी के समर्थन पर हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र ऐसे दृश्यों की अनुमति नहीं देता। चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त की प्रेमिकाएं कल्याणी और मालविका की आत्महत्या कार्नेलिया यत्न करके बच जाती है, और शकटार द्वारा नंद का वध, ये दृश्य भारतीय प्रणाली से अनुमोदित नहीं है। नाटकों के अंत में भी दोनों पद्धतियों फलागम और कैटेस्ट्रॉफी का जैसे योग हुआ है। स्कंदगुप्त में नायक के कार्य सिद्ध होने पर भी फलागम की स्थिति नहीं होती। युद्ध में विजयी होकर स्कंद राज्य अपने सौतेले भाई पूर्वगुप्त को दे देता है, और देवसेना से प्रेम करके तथा उसका प्रतिदान पाकर भी दोनों में विवाह नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य के अंत में फलागम की अधिक स्पष्ट स्थिति है, पर चाणक्य का समापन वाक्य चलो अब हम लोग चलें एक अव्याख्यात करुणा के सृष्टि करता है। पृष्ठ संख्या 153। प्रसाद में पूर्व पश्चिम की सांस्कृतिक टकराहट का गहरा एहसास है, विशेषतः नाटकों में, शायद इसलिए कि संघर्ष या टकराहट के अंकन के लिए नाटक जैसे प्रत्यक्ष माध्यम से उपयुक्त और कोई नहीं। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है, मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्रों का नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं, यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। 3/2। पुनर्जागरण के राष्ट्रीय संदर्भ में प्रक्षिप्त यह वाक्य समकालीन सांस्कृतिक प्रक्रिया पर एक गहरी टिप्पणी है। राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति प्रसाद के नाट्य विधान का मूलाधार कहा जा सकता है। इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त करने का सजग प्रयास उनके अधिकतर नाटकों में दृष्टव्य है। यह ध्यान देने की बात है कि प्रसाद जब लिख रहे थे उन दिनों सभी काव्य रूपों के लिए पौराणिक इतिवृत्त काफी लोकप्रिय थे, पर प्रसाद ने पुराण को छोड़कर इतिहास से अपने लिए कथानक चुने हैं। शायद उन्हें यह अनुभव था कि पुराण के प्रति जातीय मानस में श्रद्धा होती है, जबकि इतिहास से वह आत्मीयता का अनुभव करता है। फिर रंगमंच पर पौराणिक चरित्रों का अवतरण दर्शकों की सहज कल्पना को बाधित भी कर सकता है। प्रसाद का विश्लेषण था कि आधुनिक काल में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता के आड़े तीन बाधाएं आती हैं, सांप्रदायिकता की भावना, प्रादेशिकता के तनाव तथा पुरुष नारी के बीच असमानता की स्थिति। अपने प्रधान नाटकों अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने इन्हीं का समाधान देने का यत्न किया है। सांप्रदायिक विद्वेष का चित्र उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष के बीच उतारा है, जिसके उदाहरण स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में देखे जा सकते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष से भिन्न आर्य और आर्येतर जातियों का संघर्ष जन्मेजय का नाग यज्ञ में चित्रित हुआ है। प्रदेश और केंद्र के द्वंद्वों का रूप प्रधानतः चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में उभरता है। चंद्रगुप्त का चाणक्य इन विविध प्रकार के संघर्षों का शमन करना चाहता है। तक्षशिला के गुरुकुल में अपने शिष्य सिंहरण और चंद्रगुप्त को संबोधित करके वह कहता है, मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। 1/1। पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या ध्रुव स्वामिनी में अंकित हुई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रसाद के नाटकों का कथानक और चरित्र तो ऐतिहासिक है, पर उनकी समस्याएं आधुनिक हैं। यह नाटककार ने इतिहास को निरपेक्ष रूप में नहीं वरन समकालीन अनुभव के अंग रूप में चित्रित किया है, पर इतिहास के अपने तथ्यों की रक्षा के लिए भी उनकी चिंता बराबर देखी जा सकती है। ऐतिहासिक नाटकों की लंबी भूमिकाओं में उन्होंने उपजीव्य काल की अनेक समस्याओं पर विस्तार से विचार किया है। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक की तो भूमिका भी मूल नाटक की तरह कई चरणों में विकसित हुई है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नामक निबंध स्वतंत्र पुस्तक रूप में 1909 में प्रकाशित हुआ था। फिर चित्राधार के प्रथम संस्करण 1918 में यह संकलित हुआ, और अंततः अपने संशोधित तथा संक्षिप्त रूप में वह चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका बना 1931। रचना विधान की दृष्टि से यह रोचक संयोग है कि नाटक का स्वरूप अपने आकार में बढ़ा है, जबकि भूमिका की सामग्री कम हुई है, और क्रमशः दोनों के बीच आवश्यक संतुलन बन गया है।